ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व विजेता भारतीय खो खो टीम की आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता। इसमें भाग ले रहे हैं पुरुष खो खो टीम के कप्तान प्रतीक वैकर, कोच अश्विनी कुमार शर्मा और महिला खो खो टीम की कप्तान प्रियंका इंगले और कोच सुमित भाटिया। भेंट करता है सिद्धार्थ सिंह।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारा सौभाग्य है कि आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे साथ खो खो विश्व विजेता टीम हमारे साथ है, उनके कोचेस हमारे साथ हैं और बड़ी कामयाबी देश की थी जब हम विश्व चैंपियन खो खो में बने। सबसे पहले तो हम पूरी टीम का, हमारे दोनों कैप्टन्स का, महिला और पुरुष टीम का, साथ में हमारे पुरुष और महिला टीम के कोचेस का आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ढेर सारी बधाई देता हूँ।
धन्यवाद
धन्यवाद।
जैसे ही हमने जीत हासिल की, एक्स पे प्रधानमंत्री जी ने भी लिखा कि किस तरीके से हमने इस मैच को जीता, उन्होंने बधाई दी और एक स्वर्णिम शुरुआत जो खो खो की है उसकी हुई हमारे साथ। तो किस तरह की फील आती है कि जब देश का मुखिया आप जीतते हैं उसके साथ, क्योंकि ये जो खेल है उन्होंने हमेशा से कहा है कि हमारे देश के जो अपने खेल हैं हम दूसरे देशों के खेलों को अपनाते हैं, तो क्यों ना हम अपने देश के खेल को आगे बढ़ाएं। तो उसी दिशा में खो खो में आप लोगों ने ये कदम बढ़ाया और आज हम विश्व विजेता हैं।
आदरणीय नरेंद्र मोदी, हमेशा जो हमारे इंडिजिनियस गेम है उन्हें आगे प्रमोट किया है और एक सांसद खेल महोत्सव होता है
जी,
उसमें भी वो इसी तरह के ग्रामीण खेलों का है वो किया जाता है। ये पूरे भारतवर्ष में होता है। जब यूपी में सांसद खेल महोत्सव हुआ था उसमें भी उन्होंने जूम पर लाइव महिलाओं का मैच देखा और जो नारी शक्ति है उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और इस वर्ल्ड कप में भी नारी शक्ति अलग जोश से उतरी थी। वर्ल्ड कप में इनका जोश अद्भुत था। इन्होंने वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया
जी,
जो कि एक अद्भुत है और वो मैं कहूंगा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्रिकेट में कपिल देव ने भी बनाया 1983 वर्ल्ड कप में, उन्होंने 175 रन अपनी टीम के लिए किए और यहाँ पर प्रियंका इंगले की कप्तानी में हमारी टीम ने भारत के लिए 175 रन बनाए, जो कि एक विश्व कीर्तिमान है। और वो स्थापित तभी हुआ कि जब हमें पीछे से सपोर्ट हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की है, हमारी जो राष्ट्रपति है मुर्मू उनकी है, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनकी है और जो खेल जगत के सारे हस्ती हैं, जो हमारे इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, खो खो फेडरेशन इंडिया के प्रेसिडेंट, इन सबका जो सपोर्ट था, जो कॉन्फिडेंस था, उनको हमारे पर विश्वास था, उस विश्वास में हमारी टीम खरी उतरी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हम एशियन गेम्स में और ओलंपिक्स में इसको लेके आएंगे और आज ही हमने उन्हें वादा किया है कि हम वहां भी आपको 2 स्वर्ण पदक जरूर दिलाएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। और अगली जो चैंपियनशिप है इंग्लैंड में होने वाली है उसके लिए भी अनाउंसमेंट हुई थी। तो मैं आपको इस मंच से भी कहना चाहूंगा कि ये हमारा वादा है कि इंग्लैंड ने भारत में आके अपना झंडा फहराया था और भारत देश की नारी और पुरुष दोनों टीमें जाएंगी और इंग्लैंड में परचम
तिरंगा लहरा के
तिरंगा लहराते हुए सारा विश्व देखे।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब अभी जैसा कि आपने बताया कि 6 महाद्वीपों के 23 देशों ने इस पूरे टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और अब हम और ज्यादा आगे जा रहे हैं। अब हम एशियन गेम की बात कर रहे हैं, हम ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रतीक वाइगर आपसे मुखातिब होऊंगा, वो मोमेंट जानना चाहूंगा कि जब महिला टीम जीत चुकी थी और पुरुष टीम मैदान में जाने वाली थी तो उसके बाद आप जब खेल रहे थे किस तरह का दबाव था, एज अ कैप्टन मन में क्या चल रहा था आपके?
पहला वर्ल्ड कप था और देश के सभी लोग आ रहे थे देखने के लिए, पूरा विश्व देख रहा था चैनल के माध्यम से, तो प्रेशर हमारे ऊपर नहीं था, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इतने सारे लोगों की जो अपेक्षा है उस पे खरे उतरना है। तो हम फाइनल पे भी वैसे ही डटे हुए थे कि हमें ये जीतना है और हम कैंप में भी उसी तरह प्रैक्टिस कर रहे थे और सोच रहे थे कि हम विश्व विजेते पद लेके आएंगे। तो उसी तरह वो मैच में भी हम रिलैक्स थे। हमारी लास्ट नाइट में भी टीम मीटिंग जब हुई तब कोचेस ने हमें यही स्ट्रैटेजी बताई कि क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बाद हमको सब कोचेस ने बताया कि आप ऐसे खेलो जैसे आप फ्री हो, एकदम से कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना, जो भी जिम्मेदारी है वो मेरी है, क्योंकि कोचेस को भी हमारे ऊपर भरोसा था कि हम बस अंदर जाएंगे और जीत के आएंगे। और जब भी महिला संघ जीती थी जो माहौल था वो स्टेडियम में
जीत का आगाज पहले ही हो चुका था,
तो हम भी उसी के लिए रुके थे, यस हम भी आगे जाएंगे और वर्ल्ड चैंपियन हम बन के बाहर आएंगे, तो कोई प्रेशर हम नहीं ले रहे थे, बस जाएंगे अपना खेल खेलेंगे और जीत जाएंगे।
हम उस प्रतीक को जानते हैं जिसकी कहानी गांव से महाराष्ट्र के शुरू होती है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। क्या उस प्रतीक ने जब वो गांव में रहता था कभी सोचा था कि एक ऐसे खेल में जाएगा जो गांव का खेल कहलाता है वो ग्लोबल हो जाएगा? कैसा महसूस होता है, क्योंकि क्योंकि हर आदमी एक पहचान मिलती है आपको और प्रतीक अब कोई अनजान नहीं है, प्रतीक वायकर को पूरी दुनिया जानती है।
बहुत खुश हूँ। पहले तो हमें लगता था कि जब हम खेलते थे खो खो बस एक हॉबी बन के रह गया था और सभी लोग खेलते थे जैसे कि स्कूलों में खेल रहे थे, मैं हूँ, आप भी शायद खेले होंगे अपने स्कूल्स में, तो वो बात अलग थी कि ये हॉबी बन के बस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बन के हम खेल रहे थे खो खो, पर कभी सोचा नहीं था कि इतना फ्यूचर रहेगा खो खो में। तो बस मैं भी ऐसे ही खेलता था कि आगे जाके ये करना है। मैंने बस हमारे इधर के एक दादा थे तो उनको हमारे स्टेट का वो जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है शिव छत्रपति अवार्ड वो लेते देखा था, फिर उसके बाद उनका ढोल ताशा लेके आ रहे थे सभी एंजॉय कर रहे थे हमारे इधर, उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी कुछ करना है और वो दादा खो खो ही खेलते थे ना तो मैं ग्राउंड पे चला जाता और मुझे भी ये फील करना है कि ये कैसा लगता है, फिर उसके लिए मैंने एफर्ट्स लेना स्टार्ट किए। बट मुझे लगता है कि ये भगवान का एक प्लान है कि अच्छा हुआ कि बहुत देर हो गई क्योंकि मैं इतने एफर्ट्स ले लिए उसके लिए और भगवान ने जब भी दिया है अभी वो छप्पर फाड़ के दिया है।
प्रतीक आप पूरी टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं और खास बात इस टीम की ये है कि यहाँ पे बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए हैं, ऐसे लोगों को सुदूर क्षेत्रों से निकालना और फिर उनको इस मंच तक पहुंचा देना। बाकी जो साथी खिलाड़ी हैं उनके बारे में आप कुछ अगर शेयर करना चाहें उनकी स्टोरी को हमारे लिसनर्स के साथ।
मुझे लगता है कि हर एक खो खो प्लेयर की एक अपनी कहानी है क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर गरीब घर का बच्चा खो खो खेलने के लिए जा रहा है तो उसको इंस्ट्रूमेंट की कोई जरूरत नहीं रहती है। बाकी स्पोर्ट्स में आप देखना कि इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि फाइनेंशियली बैकवर्ड बच्चे उनको कभी कभी एफोर्ड नहीं हो पाते तो वो खो खो कंटिन्यू ही करते। बट अभी देखो हमारे टीम में ऐसे प्लेयर्स है बहुत सारे, रामजी कश्यप है, उसका छपरे का काम है, वो पुट्ठे जब इकट्ठा करता है और वो बेच के वो खुद का चलाता है। पर आज देखो वो लड़का अल्टीमेट लीग में 2 साल बेस्ट प्लेयर का अवार्ड ले चुका है और अभी भी जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हुआ उसमें इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड ले चुका है। उसके बाद हमारा सचिन भार्गव है जो छोटा था तब उसने वेटर का काम किया है शादियों में और वैसे, और वहां से वो उठा है और एफर्ट्स देने के बाद आज वर्ल्ड चैंपियन है। आप सोचोगे कि ये सपने जैसा है उसके लिए भी और हमारे लिए भी, और ये प्राउड मोमेंट है क्योंकि बहुत ऐसे लड़के हैं जो खो खो खेलते हैं और गरीब घर के बच्चे वो सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, उनको फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, पर खो खो में वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं और आगे आ सकते हैं। मुझे लगता है और ऐसे प्लेयर्स है, आदित्य गणपुले हैं जिनके पिताजी हैं और वो खुद भी न्यूज़पेपर बेचते थे पर आज वो लड़के वर्ल्ड चैंपियन है। खुद मेरी माँ खुद स्विंग मशीन करके मुझे बड़ा किया है। अनिकेत पोटे है जो स्लम एरियाज में रहता है, उसके पिताजी बेस्ट में ड्राइवर है। पर ऐसे बहुत सारी आपको सर कहानियां है जो आपको सभी लोगों को इंस्पायर करे, मुझे भी इंस्पायर करती है और आने वाले पीढ़ियों को भी ये इंस्पायर करे।
और इसीलिए शायद सही कहते हैं कि सपने देखना इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से खेलों में अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में जो माहौल बदल रहा है। और इसके साथ ही हम प्रियंका इंगले हमारे साथ महिला टीम की कप्तान है। प्रियंका सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई।
थैंक यू सर।
आज आप विश्व चैंपियन बनने वाली टीम को लीड कर रही है, कैसा महसूस कर रही हैं आप?
बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि ये पहला ही खो खो का जो विश्व चषक हुआ है इंडिया ने जीता है। जो मेरे बाकी टीम मेंबर्स है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि ये अकेले का खेल नहीं है, पूरी टीम जब सपोर्ट करती है तभी हम मैच जीत सकते हैं। कोचेस ने भी बहुत अच्छे से हमें समझाया, प्लानिंग स्ट्रेटजी हर एक मैच के हिसाब से हम सब ने मिलकर ये विश्व चषक जीता है।
जी, जैसा कि अभी हम दूसरे कैप्टन से बात कर रहे थे प्रतीक से, तो उन्होंने बताया, आपसे भी जानना चाहेंगे हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं उनके पास और आपके बैकग्राउंड के साथ कि कहां से आप आती हैं, कैसे आप खो खो से इस यात्रा में यहां तक पहुंची कि आज आप विश्व चैंपियन टीम की कैप्टन हैं।
मैंने 5th स्टैंडर्ड में खो खो खेलना चालू किया था और आज मुझे 15 साल हो गए खो खो खेलते हुए। जब मैंने खो खो चालू किया तो खो खो को इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था, और मैं हमारे स्कूल में रनिंग में फर्स्ट आई थी तो हमारे जो खो खो के कोच है उन्होंने बोला कि तुम खो खो खेलना चालू कर दो, तुम्हारे में नेचुरल स्ट्रेंथ है। लेकिन पेरेंट्स थोड़ा मना कर रहे थे क्योंकि एकेडमिक में ज्यादा ध्यान देने के लिए बोल रहे थे क्योंकि आने वाले फ्यूचर में तब खो खो का करियर नहीं था ना, जॉब्स वगैरह अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो पहले वो लोग मना कर रहे थे। लेकिन बाद में फिर मैंने पहला नेशनल खेला मेरा तब जाके थोड़ा सपोर्ट करने लगे। अभी 2016-17 से हमारे खो खो के जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहे हैं हर साल, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इंटरनेशनल के सर्टिफिकेट के बेस पर अभी खो खो में बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटी है।
तो आप लोगों के लिए भी सरकार ने घोषणा की है, तो दोनों ही कप्तान से पूछना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है अब आपके पास क्लास वन ऑफिसर का जॉब भी है।
बहुत खुश हूँ कि सरकार ने, जब हम विश्व कप जीते तो आपने जैसे कहा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया
जी।
तो ये होना चाहिए था हमारे लिए कि वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, और ये शुभकामनाएं जो भेजी है उसपे और ऊर्जा मिलती है कि आगे जाके और अच्छा परफॉर्म करेंगे और कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे। और जब हम वर्ल्ड कप जीते उसके तुरंत बाद हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कि हमें वीडियो कॉल आया, उन्होंने हमसे बात की और उसी टाइम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आपको हम ये राशि दे रहे हैं। हमें लगता है वो बड़ी राशि है हमारे खो खो प्लेयर, और प्राउड मोमेंट है।
और आप लोग मिलके भी आए हैं हमारे खेल मंत्री से?
यस, अभी हम मिलके भी आए हैं श्री मनसुख मांडविया जी से, और उन्होंने भी बोला है कि आप आगे बढ़ते रहना, हम आपको बहुत सपोर्ट करेंगे ओलंपिक्स में जाने तक और एशियन गेम्स में लाने तक।
आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी टीम में जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनकी क्या स्टोरीज हैं, वो उनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हैं वो लोग?
हमारे टीम में एक रेशमा राठौड़ एक लड़की है, वो भी स्लम एरिया में रहती है। अभी उसका सपना है कि वर्ल्ड कप के बेस पर वो अभी जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने कैश प्राइज हमें ऑफर किया है उसपे वो खुद का घर लेना चाहती है, क्योंकि उसके पास मतलब रहने के लिए अच्छा घर नहीं है। ऐसे मोनिका भी है जो सब्जी बेचकर अभी तक खेल रही है, बड़ी होती रही है। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी है जो बहुत कठिनाई करके यहाँ तक पहुंची है।
हमारे साथ जो दोनों कोचेस अश्विनी जी हैं, और लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होगी, आप मेट्रोस में जाओगे तभी आपको एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों को इन जगह से ढूंढ कर निकालना, एक आम आदमी, एक सब्जी वाला जो सब्जी बेचता है वो भी बड़े सपने देख सकता है हमारे देश में?
मैं तो हमेशा कहता हूँ कि खिलाड़ी वही बनेगा जो स्ट्रगल करेगा। बिना भुट्टा सिखा पांच का, सिखा भुट्टा बीस का, तो जो तपेगा वो पकेगा और वही
मेडल लाएगा। क्या बात कही आप।
तो इन चीजों को खिलाड़ियों को पता है और वो स्ट्रगल करते हैं, और हम तो एक उनका सहयोग मात्र रहते हैं कि अगर हमें ऐसा कोई खिलाड़ी मिलता है तो हम उसे अपने सेंटर्स पे बुलाते हैं या वहां पर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि निर्मला भाटी राजस्थान से, गरीब परिवार से है, बिहार से है, और भी खिलाड़ी है, तो जहां भी वो आते हैं, चाहे वो अश्विनी जी के पास आए हो चाहे हमारे पास आए हो, हमने किसी भी खिलाड़ी को मना नहीं किया, आप आइए। लेकिन हमें भी उम्मीद नहीं थी कि हम विश्व स्तर तक जाएंगे, और दर्द सबके पास है, चाहे वो एक खिलाड़ी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, क्योंकि वो भी गरीब परिवार से रहे हैं। ऐसे हमारे पास कई खिलाड़ी हैं, किसी ने लेबर का काम किया, किसी ने वेटर का काम किया, और आज वो सब विश्व स्तर पर हैं। महिलाओं में भी ऐसे हैं, और कईयों की माँ बर्तन मांज रही है
जी।
अनिकेत पोटेयर्स की मम्मी आज भी बर्तन मांजती हैं, ठीक है, उनके पिताजी नहीं रहे तो अर्निंग का कुछ रिसोर्स नहीं था, आज भी घरों में बर्तन मांज रही है वो। तो ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनके परिवार और तबके के बिल्कुल, रंजना पिछले साल हमारे पास एशियन में थी, उनका भी परिवार ऐसा था, और जानते हो खुशी होती है कि उन्हें जब जॉब ऑफर हुई वो इतने टैलेंटेड थे कि वो अभी अंडर एज थे, उन्हें तब डीएसपी रैंक की जॉब मिल गई
जी। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कि हमारे कोचेस किस तरीके से बता रहे हैं कि अब अवसर बहुत हैं, आपके अंदर अगर टैलेंट है, कला है, कौशल है, तो आपके लिए इस देश में बहुत सारे अवसर हैं, और जो पिछले 10 सालों में जो बदलाव हुआ है खेल की दुनिया में उसी का परिणाम है कि आज देश की टीम में आप आ रहे हैं। दोनों कैप्टन का दोबारा से रुख करेंगे, तो जिस तरह का एग्रेशन टीम में दिख रहा था, आप लोग शुरू से अपने प्रतिद्वंदी पर दबाव बनाते हुए दिख जा रहे थे। प्रतीक, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आपको सबसे ज्यादा टफ कौन सी टीम लगी?
सेमीफाइनल्स में हमें भी साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला था, फिर उसके बाद हमारा नेपाल के साथ, वो भी टफ टीम थी, पर मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीकन टीम का मुकाबला बहुत ही कड़ा था, क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम में देखो 1200 से ज्यादा स्कूलों में खो खो चल रहा है, उनके नेशनल्स हो रहे और 1996 से उनके नेशनल्स हो रहे, तो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते, और आपने देखा होगा कि वो मैच भी हमारे एकदम कांटे की टक्कर हुई।
टीम बेटी, जो टीम जीतती है वही बनती है विश्व विजेता। तो हमारे दोनों कैप्टन्स, हमारे दोनों कोचेस, आपने जो भारत की विजय पताका है उसे वैश्विक स्तर पर लहराया है, हम सबको वो खुशी दी है, और तमाम उन करोड़ों लाखों युवाओं को आपने प्रेरणा दी है जो अभी भी गाँव के दूर दराज के इलाके में है, और उन्हें एक वैश्विक प्लेटफॉर्म देने की आपकी जो कोशिश है, आपको इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, और आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए भी बहुत सारी मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार की ओर से, आकाशवाणी के श्रोताओं की ओर से। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति।
द वर्ल्ड गोस गो, द वर्ल्ड गोस गो, द वर्ल्ड गोस गो।
अभी आप सुन रहे थे विश्व विजेता भारतीय खो खो टीम की आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता। इसमें भाग ले रहे थे पुरुष खो खो टीम के कप्तान प्रतीक वैकर, कोच अश्विनी कुमार शर्मा और महिला खो खो टीम की कप्तान प्रियंका इंगले और कोच सुमित भाटिया। भेंटकर्ता थे सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।